एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञानोगोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार, अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, आज हम एक बहुत ही खास किताब और उसकी लेखिका के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जिसने अफ्रीका के नज़ारों को, वहाँ के लोगों को और इंसानी जज्बातों को बहुत खूबसूरती से शब्दों में उतारा है। हम बात कर रहे हैं इसाक डिनिसन की क्लासिक किताब आउट ऑफ अफ्रीका की।
जी हाँ, आउट ऑफ अफ्रीका। ये 1937 में आई थी और ये सिर्फ एक संस्मरण या ट्रैवलॉग नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है।
बिल्कुल, और इसाक डिनिसन, ये असल में उनका कलम नाम था, है ना?
हाँ, उनका असली नाम था बैरोनेस कैरिन वॉन ब्लिक्सन फाइनके। डेनमार्क की एक अभिजात महिला थी वो, और ये किताब, ये उनके केन्या में, जो तब ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका कहलाता था, वहाँ एक कॉफी फार्म पर बिताए 17 सालों का जिक्र है, 1914 से 1931 तक।
17 साल, एक लंबा अरसा।
बहुत लंबा। और ये बस घटनाओं की लिस्ट नहीं है, ये बहुत काव्यात्मक है, दार्शनिक है। ऐसा लगता है जैसे वो एक खोई हुई दुनिया के लिए, गुजरे हुए वक्त के लिए, और शायद अपने ही एक खोए हुए हिस्से के लिए गीत लिख रही हूँ, एक उदास सा गीत।
और ये आज भी इतनी जरूरी क्यों लगती है? मतलब आज के दौर में इसकी क्या अहमियत है?
देखिए, ये कहानी सिर्फ कैरन ब्लिक्सन की नहीं रह जाती, ये हमें भाग्य के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। अलग अलग संस्कृतियां जब मिलती हैं तो कितना कुछ जटिल होता है, अच्छे और बुरे दोनों पहलू होते हैं।
हाँ, और कैसे कोई जगह, कोई लैंडस्केप किसी इंसान की रूह पर अपनी छाप छोड़ देता है हमेशा के लिए।
बिल्कुल। और किताब में औपनिवेशिक जीवन का एक बहुत ही मिला जुला, कभी कभी विरोधाभासी सचित्र है, जो आज भी हमें प्रिविलेज यानी विशेषाधिकार क्या होता है, कल्चरल एक्सचेंज क्या है, कहानी कहने की जिम्मेदारी क्या है, इन सब पर सोचने को मजबूर करता है।
सही बात है। तो ये सिर्फ एक औरत की कहानी नहीं, बल्कि हानि और लाभ की, दोस्ती और जुनून की, उम्मीद और नाउम्मीदी की कहानी है।
हाँ, और शायद सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे हालात ने एक डैनिश बैरोनेस को एक कमाल की कहानीकार बना दिया, एक ऐसी कहानीकार जो दुनिया को अफ्रीका की एक बिल्कुल अलग मिथ की नज़रिए से देखती थी।
तो चलिए आज कैरन ब्लिक्सन की इसी जिंदगी और उनकी सोच की गहराइयों में उतरते हैं।
जरूर।
तो शुरुआत करते हैं उनके शुरुआती सालों से। कैरन का जन्म हुआ 1885 में डेनमार्क में। परिवार काफी जाना माना था, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध।
जी हाँ, उनके पिता विलहेम डिनिसन, वो खुद भी एक लेखक थे, काफी एडवेंचरस किस्म के इंसान थे। वो तो अमेरिका में जो नेटिव अमेरिकन कबीले हैं उनके बीच भी रहे थे कुछ समय।
अच्छा, तो वो एडवेंचर वाला जज्बा शायद पिता से मिला हो।
हो सकता है। लेकिन एक बहुत दुखद घटना हुई जब कैरन सिर्फ 10 साल की थी, उनके पिता ने आत्महत्या कर ली।
ओहो, 10 साल की उम्र में, इसका तो बहुत गहरा असर पड़ा होगा।
हाँ, बहुत गहरा। शायद बचपन में ही ये जो नुकसान हुआ, इसने उनके मन में हानि और भाग्य को लेकर एक समझ पैदा कर दी हो, जो बाद में उनके लेखन में दिखती है।
और माँ कैसी थी? इंगबॉर्ग नाम था उनका शायद।
हाँ, इंगबॉर्ग, वो यूनिटेरियन थी, मतलब काफी प्रगतिशील विचारों वाली, लेकिन साथ ही नैतिक रूप से काफी सख्त भी, एक तरह का मिलाजुला असर था।
और पढ़ाई लिखाई?
कैरन ने कोपेनहेगन, पेरिस, रोम में आर्ट्स की पढ़ाई की, कला की समझ, इससे उनकी नज़र बहुत पैनी हो गई, चीज़ों को देखने का, महसूस करने का एक खास अंदाज उनमें आ गया।
और ये उनके लेखन में झलकता भी है, जिस तरह वो नज़ारों का वर्णन करती हैं ना।
बिल्कुल, जैसे वो कोई पेंटिंग बना रही हूँ शब्दों से, रंग, रोशनी, माहौल, सब कुछ।
फिर आया 1914, उनकी जिंदगी का एक बड़ा मोड़, शादी हुई।
हाँ, अपने चचेरे भाई बैरन ब्रोवर वॉन ब्लिक्सन फाइनके से। कहते हैं कि ये शादी अरेंज्ड जैसी थी, मतलब सहूलियत के लिए ज्यादा, प्यार शायद उतना नहीं था।
और शादी के फौरन बाद अफ्रीका?
हाँ बिल्कुल, शादी हुई और वो निकल पड़े ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका यानी आज के केन्या के लिए।
ये तो बहुत बड़ा बदलाव रहा होगा, डेनमार्क के संधे हुए माहौल से निकलकर अफ्रीका की जंगली खुली दुनिया में।
जबरदस्त बदलाव। सोचिए, वो अपने साथ यूरोप की नफासत ले जा रही थीं, अपनी चीनी मिट्टी के बर्तन, अपनी कविताएं, अपनी सोच, और उसे रख रही थीं एक विशाल अनजाने महाद्वीप के बीचों बीच।
वहां पहुंचकर पहला इम्प्रेशन कैसा रहा होगा?
अफ्रीका ने उन्हें जैसे अपनी गिरफ्त में ले लिया, वहां का लैंडस्केप, नोंग की पहाड़ियां, खुला आसमान, जंगली जानवर, और सबसे बढ़कर वहां के लोग, किक्यू, मसाई, सोमाली समुदाय के लोग, उनसे उनका गहरा रिश्ता बना।
हाँ, उनकी मुख्य सेवक फरा अदेन का जिक्र बहुत आता है किताब में।
बिल्कुल, फरा अदेन एक सोमाली सज्जन। उनके साथ कैरन का वफादारी और दोस्ती का एक बहुत ही गहरा अटूट रिश्ता बना जो जिंदगी भर चला। किक्यू समुदाय के जो मुखिया थे केनानजुई, उनके साथ भी उनका सम्मान का रिश्ता था।
उन्होंने वहां की भाषा सीखी, स्वाहेली।
हाँ, स्वाहेली सीखी, वहां के तौर तरीके समझे और धीरे धीरे वो मेम साहेब बन गई।
मेम साहेब, ये शब्द अपने आप में उस दौर की कहानी कहता है।
हाँ, इसमें सत्ता, जिम्मेदारी, दूरी, स्नेह सब कुछ मिला जुला था।
लेकिन अफ्रीका में जीवन आसान नहीं था, खासकर फार्म पर।
बिल्कुल नहीं, उनके पति ब्रोर वो फिनेंस संभालने में बिल्कुल नाकाम रहे और रिश्तों में भी वफादार नहीं थे। नतीजा ये हुआ कि फार्म पर कर्जा चढ़ता गया।
और फिर वो अलग हो गए।
जी, 1921 के आसपास वो अलग रहने लगे और 1925 में तो तलाकी हो गया। इसके बाद कॉफी फार्म की पूरी जिम्मेदारी अकेले कैरन पर आ गई।
ये तो बहुत बड़ी चुनौती रही होगी, एक महिला अकेले अफ्रीका में कॉफी फार्म चला रही हैं उस जमाने में।
बहुत बड़ी, और सिर्फ यही नहीं, ब्रोर की वजह से उन्हें सिफिलिस की बीमारी भी लग गई थी जिसने उन्हें ताउम्र परेशान किया।
ओहो, और फार्म चलाने में और क्या मुश्किलें थीं? कॉफी की खेती तो वैसे भी मुश्किल होती है।
प्रकृति भी इम्तिहान लेती रहती थी, कभी भयानक सूखा पड़ जाता तो कभी टिड्डियों का दल पूरी फसल चौपट कर देता।
और कॉफी के दाम भी गिरते रहते होंगे बाजार में।
बिल्कुल, तो दिवालिया होने का खतरा तो हमेशा ही बना रहता था।
लेकिन शायद इन्हीं मुश्किलों ने उन्हें और मजबूत बनाया।
हाँ, लगता तो यही है, वो ज्यादा आत्मनिर्भर हुई, ज्यादा लचीली बनी। और उनका घर सिर्फ फार्म हाउस नहीं रहा, वो आसपास के लोगों के लिए एक तरह का ठिकाना बन गया। वो उनके लिए डॉक्टर भी थीं, जज भी, टीचर भी, कई भूमिकाएं निभा रही थी वो।
और इसी दौरान इन सब संघर्षों के बीच उनके अंदर का कहानीकार जागरा था।
क्या बात कही, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे जमीन पर कॉफी उगाने की कोशिशें शायद उतनी कामयाब नहीं हो रही थी, लेकिन उनके अंदर कहानियों की फसल तैयार हो रही थी।
वो कहानियां सुनाती थी अपने दोस्तों को।
हाँ, खासकर एक बहुत ही दिलचस्प आदमी थे डेनिस फिंच हैटन, एक अंग्रेज अभिजात, शिकारी, पायलट, बहुत पढ़े लिखे। कैरन अक्सर उन्हें और दूसरे दोस्तों को कहानियां सुनाया करती थी।
और ये कहानी सुनाना धीरे धीरे उनके लिए कला बन गया।
हाँ, ये सिर्फ टाइम पास नहीं था, ये दुनिया को समझने का, लोगों से जुड़ने का, और शायद डेनिस के साथ जो उनका रिश्ता था उसे एक अलग बौद्धिक स्तर पर ले जाने का तरीका था। कई लोग मानते हैं कि उनका असली हुनर किसानी नहीं, कहानी सुनाना ही था, और यही उनका असली ब्रेक थ्रू था।
डेनिस फिंच हैटन, इनका कैरन के जिंदगी में आना एक अहम पड़ाव माना जाता है। थोड़ा और बताएंगे इनके बारे में?
हाँ, डेनिस फिंच हैटन का जिक्र करीब 1918 से आता है, लेकिन उनका रिश्ता गहरा हुआ 1925 के बाद जब कैरन अकेली हो गई थी। डेनिस अफ्रीका में सफारी करते थे और वो कैरन की फार्म को अपने बेस की तरह इस्तेमाल करते थे।
तो ये सिर्फ एक रोमांटिक रिश्ता नहीं था?
नहीं, उससे कहीं बढ़कर था। डेनिस उनके लिए एक बौद्धिक साथी थे, इंटेलेक्चुअल कंपेनियन। वो उनकी कहानियों को सुनते थे, सराहते थे। कहते हैं कि डेनिस ने ही उन्हें सबसे पहले कहा कि तुम्हें ये कहानियां लिखनी चाहिए।
अच्छा, तो उन्होंने लिखने के लिए प्रोत्साहित किया।
हाँ, उनके रिश्ते में एक बौद्धिक बराबरी थी, विचारों का आदान प्रदान था, संगीत भरी शामें, साथ में सफारी पर जाना, कविताओं पर घंटों बातें करना। कैरन ने बाद में इस दौर को अपनी जिंदगी का स्वर्ण युग कहा है।
और डेनिस के इस भरोसे ने, इस प्रोत्साहन ने शायद कैरन को वो आत्मविश्वास दिया होगा जो एक लेखक बनने के लिए जरूरी होता है।
बिल्कुल, और उस औपनिवेशिक समाज में भी कैरन का एक अलग रुतबा बन गया था। उनका फार्म दोस्तों के लिए जैसे बर्कले कोल और डेनिस एक मिलने जुलने का अड्डा बन गया था। लोग उनकी समझदारी, उनके साहस, अरे उन्होंने शेर का शिकार करना भी सीख लिया था।
क्या बात है।
हाँ, और उनके जो गैर पारंपरिक तौर तरीके थे उसके लिए भी वो जानी जाती थीं।
लेकिन ये स्वर्ण युग भी हमेशा नहीं रहा, मुश्किलें फिर से आईं।
हाँ, 1920 के दशक के आखिर में और 30 की शुरुआत में वैश्विक आर्थिक मंदी आई, ग्रेट डिप्रेशन। इसका असर कॉफी के बाजार पर बहुत बुरा पड़ा, दाम गिर गए।
और शायद वो जमीन भी कॉफी के लिए बहुत अच्छी नहीं थी।
हाँ, ये भी एक फैक्टर था, जिस ऊंचाई पर फार्म था वो शायद कॉफी के लिए एकदम आइडियल नहीं थी। तो नतीजा ये हुआ कि इतनी मेहनत, इतने सालों के संघर्ष के बाद भी फार्म कंपनी दिवालिया हो गई, जमीन बेचनी पड़ी।
ये तो बहुत बड़ा झटका रहा होगा, सिर्फ बिजनेस का नुकसान नहीं, एक तरह से घर छिन गया, सपना टूट गया।
बिल्कुल, घर को खाली करना, सामान समेटना, और सबसे मुश्किल था उन किकुयू परिवारों के भविष्य की चिंता करना जो उस फार्म पर निर्भर थे। کیرن نے ان کے لیے دوسری جگہ زمین دلانے کی بہت کوشش کی
اور اسی مشکل دور میں وہ بھیانک حادثہ بھی ہوا۔
جی 1931 میں جب فارم دیکھ ہی رہا تھا تبھی ڈینس فنچ ہیٹن کی ایک پلین کریش میں موت ہو گئی۔
اوہ، یہ تو ایک کے بعد ایک تباہی جیسا تھا۔
ہاں، یہ کیرن کے لیے شاید سب سے بڑا ویکتیگت صدمہ تھا۔ انہوں نے اپنا پیار کھویا، اپنا سب سے قریبی دوست اور بودھک ساتھی کھویا، اور شاید وہ جو ایک رومانٹک افریقی سپنا تھا وہ بھی ڈینس کے ساتھ ہی ختم ہو گیا۔
تو 1931 میں جب کیرن نے افریقہ چھوڑا وہ ایک پوری طرح سے بدلی ہوئی انسان تھی۔
بالکل، دکھ تھا، ناکامی کا احساس تھا، لیکن ساتھ ہی 17 سال کے انوبھووں کا ایک ایسا خزانہ تھا جس نے انہیں وہ بنایا جو وہ بنی، اور یہی انوبھو ان کے مہان ساہتک کام آؤٹ آف افریقہ کا آدھار بنا۔
ان کی سوچ، ان کے فلسفے کو سمجھنا بھی ضروری ہے ان کے جیون اور لیکھن کو سمجھنے کے لیے۔
ہاں، ان میں ایک عجیب سا مشرن تھا، یورپ کے ابھیجات ورگ والا رومانٹک نظریہ اور ساتھ ہی پرکرتی کے لیے گہرا سمان، اور وہ بھاگیہ میں، نیتی میں بہت وشواس کرتی تھی، فیٹلزم جسے کہتے ہیں۔
فیٹلزم، اس کا کیا مطلب تھا ان کے لیے؟ کیا وہ سب کچھ قسمت پر چھوڑ دیتی تھی؟
نہیں، ایسا نہیں، مطلب یہ تھا کہ جیون کی جو بڑی گھٹنائیں ہیں، سکھ دکھ، وہ شاید ایک بڑی یوجنا کا حصہ ہیں، جیسے کوئی دیویہ شکتی یا ایشور ایک کہانی لکھ رہا ہے۔ ان کا ایک مشہور کوٹ ہے، ایشور کو کہانی پسند ہے۔
اچھا، تو اس نظریے سے تراسدی بھی اس کہانی کا ایک ضروری حصہ بن جاتی ہے۔
ہاں، ایک دردناک لیکن ضروری حصہ۔ یہ ہار مان لینا نہیں بلکہ چیزوں کو ایک بڑے کینوس پر دیکھنا تھا، اس سے شاید انہیں دکھ سہنے کی طاقت ملتی تھی۔
اور ان میں ایک طرح کا کوڈ آف آنر بھی تھا، ہے نا؟ مطلب ساہس، وفاداری، ادارتا، ذمہ داری نبھانا۔
بالکل، یہ ان کے کاموں میں دکھتا بھی تھا کہ کوئی لوگوں کے ساتھ ان کے رشتے تھوڑے جٹل تھے، جیسا ہم نے کہا، اس میں ایک طرح کا پتر ستاتمک سنیہ تھا، مطلب دیکھ بھال اور سمان تو تھا لیکن کہیں نہ کہیں وہ خود کو بہتر سمجھتی تھیں۔
یہ اس دور کی سوچ تھی جسے آج ہم کرٹیکلی دیکھتے ہیں۔
ہاں بالکل، لیکن وہ مانتی تھیں کہ ان لوگوں میں، جنہیں آدم کہا جاتا تھا، ایک طرح کی نیسرگک کلینتا ہے، ایک گریما ہے جو شاید آدھونک یورپ میں کھو گئی ہے۔
ان کا نظریہ مول روپ سے ٹریجک تھا، مطلب وہ سمجھتی تھی کہ یہ دنیا، یہ پرانا افریقہ جسے وہ پیار کرتی ہیں، یہ ختم ہو رہا ہے۔
ہاں، انہیں اس بات کا احساس تھا کہ یہ نازک ہے، یہ بدل رہا ہے اور شاید ہمیشہ کے لیے کھو جائے گا۔
انہیں افریقہ آنے کے لیے کس چیز نے پریرت کیا ہوگا؟ پیسہ، شہرت؟
نہیں، مجھے نہیں لگتا، ان کی پریرنا زیادہ گہری تھی۔ وہ یورپ کے بندھنوں سے آزاد ہو کر ایک زیادہ سارتھک، زیادہ رومانچک جیون جینا چاہتی تھیں، ایک ایسی زندگی جو کسی کہانی کی طرح ہو۔ انہیں افریقہ کی کھلی ہوا، اس کی وشالتا اور اپنی پہچان بنانے کا موقع کھینچ لایا۔
زمین سے بھی ان کا رشتہ صرف مالک اور مزدور والا نہیں تھا۔
نہیں، بالکل نہیں، وہ زمین کو سمجھنا چاہتی تھیں، اس پر محنت کرنا چاہتی تھیں، اسے سہیجنا چاہتی تھیں، اور فارم پر جو لوگ تھے ان کی بھلائی کی چنتا انہیں واقعی تھی، تبھی تو فارم بکنے کے بعد بھی وہ ان کے لیے لڑی۔
اور ڈینس فنچ ہیٹن کے ساتھ ان کا رشتہ، وہ بھی ایک پریرنا رہا۔
ہاں ضرور، ڈینس ان کے لیے ایک آدرش جیسے تھے، ان کی برابری کا بننے کی چاہت نے بھی شاید انہیں خود کو نکھارنے، اپنی کہانی کہنے کی کلا کو اور مانجنے کے لیے پریرت کیا ہوگا۔
مشکلوں کا سامنا انہوں نے کیسے کیا؟ کیا وہ ٹوٹ جاتی تھیں یا ان میں کوئی خاص طریقہ تھا؟
ان کا طریقہ الگ تھا، وہ ایک طرح کی شانت ابھیجات گریما بنائے رکھتی تھی، جیسے یہ کوئی پریکشا ہو جسے پاس کرنا ہے۔ وہ روتی دھوتی نہیں تھی بلکہ درد کو سہتی تھی اور اس میں بھی کوئی مطلب ڈھونڈنے کی کوشش کرتی تھی۔
یہاں پھر وہی فیٹلزم والا فلسفہ کام آتا ہوگا۔
ہاں، وہ درد کو نکارتی نہیں تھی بلکہ اسے اپنی کہانی کا حصہ بنا لیتی تھی، اسے ایک اداس خوبصورت یاد میں بدل دیتی تھی۔
اور فارم کھونے کا جو اتنا بڑا دکھ تھا، اس سے وہ کیسے ابھری؟
لکھ کر۔ لیکھن ان کے لیے ایک تھراپی جیسا بن گیا۔ انہوں نے اپنی سب سے بڑی ہار کو، اپنے سب سے بڑے نقصان کو کلا کے ایک امر کام میں بدل دیا، آؤٹ آف افریقہ لکھ کر۔
کمال ہے، مطلب دکھ کو ہی رچناتمکتا کا سروت بنا لیا۔
بالکل، انہوں نے اپنی کھوئی ہوئی دنیا کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا اپنی کتاب میں، اپنی پیڑا کو ارتھ دے دیا۔ انہوں نے وپتی پر صرف قابو نہیں پایا، اسے اپنی وراثت بنا لیا۔
اگر ہم ان کے جیون کے 3 سب سے اہم موڑوں کو دیکھیں جنہوں نے سب کچھ بدل دیا، تو وہ کون سے ہوں گے؟
پہلا تو میرے حساب سے وہی ہوگا جب وہ قریب 1921 میں برور سے الگ ہوئیں اور اکیلے فارم سنبھالا۔
ہاں، یہ بہت بڑا قدم تھا، اس سے ان کا پارمپرک رول ٹوٹ گیا۔ وہ ایک نربھر پتنی سے ایک سوتنتر مکھیا بن گئی، اس نے انہیں زمین اور لوگوں کے اور قریب لا دیا۔ وہ اب صرف باہر سے دیکھنے والی نہیں تھی، वो सबकी जिम्मेदार थीं।
दूसरा बड़ा मोड़ जाहिर है डेनिस फिंच हैटन का उनके जीवन में आना, खासकर 1925 के बाद।
हाँ, जैसा हमने कहा, वो सिर्फ एक प्रेमी नहीं थे,
वो उनके बौद्धिक और आध्यात्मिक साथी थे। उन्होंने कैरन के कहानीकार वाले हुनर को पहचाना, उसे हवा दी। उनके रिश्ते ने कैरन की जिंदगी में वो चमक भरी, वो अनुभव दिए जो बाद में उनके लेखन की जान बने।
और तीसरा सबसे निर्णायक मोड़,
वो 1931 का साल, फार्म का बिकना, डेनिस की मौत और अफ्रीका से विदाई, ये सब कुछ एक साथ।
ये उनके अफ्रीकी जीवन का अंत था। 17 साल की मेहनत, सपने, रिश्ते सब पीछे छूट गए।
हाँ, इस अनुभव ने उन्हें पूरी तरह तोड़ दिया होगा, लेकिन शायद इसी टूटन ने उन्हें वो लेखिका बनाया जिसे आज हम जानते हैं, इसाक डेनिसन। ये जो गहरी हानि थी, यही उनके लिखने की सबसे बड़ी वजह बनी। उनका साहित्यिक करियर इसी नुकसान से शुरू हुआ।
तो कैरन ब्लिक्सन की इस कहानी से और आउट ऑफ अफ्रीका से हम आज क्या सीख सकते हैं, क्या मानवीय सबक मिलते हैं?
एक सबक तो बहुत साफ है कि हानि, बड़ा नुकसान भी बदलाव और नई शुरुआत का कारण बन सकता है।
हाँ, मतलब कि सबसे बुरा अनुभव भी आपको कुछ नया रचने की प्रेरणा दे सकता है।
बिल्कुल, कैरन ने अपने दुख को कला में बदला, उसे एक नया मतलब दिया। ये बहुत उम्मीद देने वाली बात है।
और एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो है रोजमर्रा की चीजों में सुंदरता और गहरा अर्थ देखना।
हाँ, दुनिया को एक कवि की नजर से देखना। पहाड़ी का रंग, किसी जानवर का चलना, हवा की आवाज, इन सब में एक कहानी ढूंढ लेना,
ये आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में बहुत जरूरी लगता है। ठहरना, ध्यान देना, अपने आसपास से जुड़ना।
तो दिल से होता है, प्यार से, समझ से।
कैरन ने फार्म खो दिया, पर अफ्रीका हमेशा उनका रहा, उनकी यादों में, उनकी कहानियों में।
सही कहा। और कहानी कहने की ताकत, कैसे हम कहानियों के जरिए अपनी जिंदगी को समझते हैं, उसे मायने देते हैं।
हाँ, अपने सुख दुख को शब्दों में ढालना, मुश्किलों से लड़ने का एक तरीका। कैरन के लिए तो कहानी कहना जीने जैसा था।
ये हमें याद दिलाता है कि हम सब भी तो अपनी कहानी कह रहे हैं, जी रहे हैं।
आज की दुनिया में जहां सब कुछ इतना तेज, इतना डिजिटल है, कैरन की कहानी एक ठहराव लाती है।
हाँ, ये हमें प्रकृति से जुड़ने, धीमा होने और असली इंसानी रिश्तों को समझने का न्योता देती है।
और जब दुनिया में इतनी नफरत और विभाजन है, तब ये कहानी, हाँ, इसकी औपनिवेशिक सीमाएं हैं, उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये भी दिखाती है कि अलग अलग संस्कृतियों के बीच गहरे रिश्ते बन सकते हैं।
बिल्कुल, ये कला की, कहानी कहने की ताकत का सबूत है। कैसे कहानियां हमें दूसरों को समझने में मदद करती हैं, सहानुभूति जगाती हैं और ये याद दिलाती है कि एक सार्थक जीवन अक्सर मुश्किलों और दुखों से भरा होता है, और इन दोनों को अपनाने में ही शायद असली खूबसूरती है।
कैरन की कहानी एक सवाल भी छोड़ जाती है ना, क्या हम अपने जीवन की कहानी देख पाते हैं? क्या हम उसमें छिपे मिथक को पहचानते हैं?
हाँ, और क्या हमें हिम्मत है कि हम उस चीज से प्यार करें जो थोड़ी जंगली है, जिसे हम पूरी तरह काबू नहीं कर सकते? और वो कौन सी कहानी है जो सिर्फ हम ही सुना सकते हैं?
चलिए, इस बातचीत को समेटते हुए 3 खास बातें निकालते हैं। एक, भावनात्मक सबक।
भावनात्मक सबक शायद यही है कि उस चीज से प्यार करने में एक अजीब सी, दिल टूटने वाली खूबसूरती है, जिसे आप जानते हैं कि आप खो देंगे। आउट ऑफ अफ्रीका असल में अफ्रीका से ज्यादा अफ्रीका की याद के बारे में है, ये दुख की उदात्तता के बारे में है।
और एक बौद्धिक या वैचारिक सबक,
वो है डेनिसन का जीवन को एक बड़ी कहानी के रूप में देखना, जिसे भाग्य या ईश्वर लिख रहा है। इस नजरिए से हर घटना, अच्छी या बुरी, सार्थक बन जाती है। ये उनके निजी अनुभव को एक यूनिवर्सल मैसेज में बदल देता है।
सही। और तीसरा, एक सार्वभौमिक सबक जो हम सबके काम आ सकता है,
वो है कला की, रचनात्मकता की मुक्ति देने वाली शक्ति। फार्म चला गया, प्यार खो गया, जिंदगी बिखर गई, लेकिन लिखने के जरिए, कहानी कहने के जरिए, कैरन ने अपनी खोई हुई दुनिया और खुद के लिए एक तरह की अमरता पाली।
ये इस बात का सबूत है कि रचनात्मकता हमारे सबसे गहरे जख्मों को हमारे सबसे बड़े तोहफों में बदल सकती है।
बिल्कुल।
फिर मिलेंगे अगले अंक में, एक नई विश्व विख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।